आज 23 जुलाई शनिवार, आज के दिन हमारे एक बड़े महान आचार्य शिला लोकनाथ गोस्वामी महाराज गौलोक धाम को गमन किए थे। बोलो शिला लोकनाथ गोस्वामी महाराज तेरो भाव महा महोत्सव की। एक एक देना दो 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 काम तो नहीं होंगे। अंत में प्रसाद मिलेगा लड्डू का, तो आओ वैष्णवों की स्मृति में ये जो भजन गाया जाता है, ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचो, ये अनिलो प्रेमा प्रभु पोथा
Yeah, yeah, yeah.
जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवास ठाकुर कहां गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहां है? शिला सनातन कहां है? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहां है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहां है? और शिला कृष्णदास कविराज कहां? महानर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु एकाएक कहां चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहां पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा हूं। बोलो शिला नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की। बोलो शिला लोकनाथ गोस्वामी महाराज की। लोकनाथ गोस्वामी महाराज जो भगवान गौरांग महाप्रभु के संगी थे, उनके बड़े घनिष्ठ भक्त थे, उनके साथ रहते थे और इनके हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम था। तो लोकनाथ गोस्वामी जितने भी गोस्वामी वृंदावन वास के उनमें सबसे बड़े थे। बहुत सारे गोस्वामी ने ब्रजवास किया लेकिन लोकनाथ महाराज सबसे बड़े थे। इनमें इतनी विनम्रता थी वो अपना मान प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे। ये जो लाभ प्रतिष्ठा है, मान प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, ये भी हमको भगवान से दूर ले जाता है। उन्होंने शिला कृष्णदास कविराज महाराज को कहा, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की, कहा कि चैतन्य चरितामृत में मेरा नाम नहीं लिखना, उससे मेरे नाम को निकाल दें। इनका शरीर और मन पूरी रूप से वृंदावन धाम में लगा हुआ था। भगवान राधा विनोद की जो दिव्य लीला थी सदा इनके हृदय में वो नृत्य करती थी। और इनके जो कान थे केवल भागवत महापुराण को सुनते थे। जो कोई भी भागवत को पढ़ता था, लोकनाथ महाराज कहते हैं वो मेरा मित्र है, जो भी भागवत को पढ़ता है वो मेरा मित्र है। एक बार श्री कृष्ण भगवान खुद प्रकट हुए और उन्होंने लोकनाथ महाराज को राधा विनोद की जो मूर्ति दी। लोकनाथ गोस्वामी जो भगवान के द्वारा दी हुई मूर्ति राधा विनोद की, अपने गले में उस मूर्ति को ये टांग के रखते थे, वो सारे ब्रिज में भ्रमण करते थे। लोकनाथ महाराज इतने महान, नाम अपना मान सम्मान कुछ नहीं चाहते थे और इन्होंने शिष्य भी कोई नहीं बनाए, लेकिन इनके एक ही शिष्य थे शिला नरोत्तम ठाकुर। पहले इन्होंने नरोत्तम ठाकुर को भी मना कर दिया प्रतीक्षा देने के लिए, लेकिन लोकनाथ अपना नरोत्तम ठाकुर की इतनी विनम्रता थी, उन्होंने बस एक ही शिष्य बनाया। ये जो भजन है ये भी नरोत्तम ठाकुर की का ही रचा हुआ है, जो गाया भी हमने। उन्होंने लोकनाथ महाराज की जो नरोत्तम ठाकुर की दिव्य जो प्रमाणिक विनम्रता देखी और उनका भाव देखा उनकी सेवा करने का, इसलिए उन्होंने अपना प्रण तोड़ करके उनको दीक्षा दी। तब उन्होंने दीक्षा दी कि एक साल तक ये गुरु का मल मूत्र साफ करते रहे, जहां वो बाहर शौच में जाते थे एक साल तक करते रहे ऐसा। एक साल के बाद जब लोकनाथ महाराज को पता लगा, उन्होंने बोला कौन चोर है, इन्हें सेवा चुराता है। उन्होंने फिर रात के अंधेरे में उसको पकड़ लिया, नरोत्तम ठाकुर को पकड़ लिया। कहा नरोत्तम, तुम एक राजकुमार होते हुए राजा के बेटे हो, तुम एक महत्व का काम करते हो। तो नरोत्तम ठाकुर रोते रोते उनके चरणों में गिर गए। फिर उन्होंने जब उनकी भक्ति उनकी विनम्रता देखी तब उनको शिष्य बनाया। ये जो हम रोज श्री गुरु चरणा पद्मा गाते हैं, इसके रचयिता भी नरोत्तम ठाकुर है। लोकेनाथ लोके राजीवन। लोकनाथ गोस्वामी जो हैं, उनकी जो राधा विनोद विग्रह है वो भी जयपुर में उनकी सेवा पूजा होती है। वो जो शुरू का जो विग्रह था राधा विनोद का, उसका वो विस्तार रूप है राधा विनोद जी का। तो राधा विनोद जो है वो राधा गोकुलानंद के मंदिर में महा विराजमान है वृंदावन में। लोकनाथ महाराज की समाधि है वो मंदिर का जो परिसर है उसमें सबसे बड़ी समाधि है। और ये अवतार के मंजुली मंजरी के, क्योंकि सदा राधा जी की सेवा में थी और वृंदावन के मित्र लीला में। श्रीमद राधा विनोदिका सेवा संपत समन्वितम पद्मनाभा आत्मा जम श्रीमल लोकनाथ प्रभु भजे। मैं लोकनाथ गोस्वामी प्रभु जो कि पद्मनाभ जी के पुत्र हैं उनके श्री चरणों का भजन करता हूं, उनके कमलों के श्री चरणों का भजन करता हूं। वो राधा विनोद जी के जो चरण कमल हैं उन्हीं में उनका ध्यान लगा रहता है। ये गौतम ठाकुर ने कहा। बोलो श्रीला लोकनाथ गोस्वामी महाराज की। आप देखो कि ये गोस्वामी जो थे कितने महान थे। भगवान इनसे आके बातें करते थे। ये जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है इसमें बड़े महान वैष्णव हैं, बड़े बड़े भजनीक जिन्होंने इस संप्रदाय को बना रखा हर हालत में। इसलिए इसी संप्रदाय में भगवान गौर हरि प्रकट हुए। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि चार ही प्रमाणिक संप्रदाय हैं। पहली ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, दूसरी श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी माता ने शुरू की थी, तीसरी कुमार संप्रदाय और चौथी रुद्र संप्रदाय। इस संप्रदाय में जो महान वैष्णव हुए भजनीक भगवान के शुद्ध भक्त जिनका जीवन दूसरों के लिए था, जिन्होंने बड़े ग्रंथ लिखे, इसलिए भगवान ने इसी संप्रदाय को चुना प्रकट होने के लिए। इसलिए हम सबको इन सब पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा की याचना करनी चाहिए ताकि इन सब की कृपा से हम सबको प्रेमा भक्ति का लाभ प्राप्त हो, ताकि अंतकाल में जब हमारा प्राण शरीर से निकले, वो तो निकल नहीं है, कब निकलेंगी ये पता नहीं है, आज नहीं तो कल, परसों, नरसों, 10 साल, 20 साल, 50 साल निकल नहीं है। उस समय हमारा ध्यान भगवान गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण के श्री चरणों में हो। देखो जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये जो वृद्ध की जगह हैं, वृद्ध की जो स्थल हैं, जैसे लोकनाथ महाराज हुए, छठ गोस्वामी हुए, सबसे बड़े लोकनाथ महाराज को बताया है, इनमें वृद्ध के स्थान ढूंढ निकाले भगवान की कृपा से। वृद्ध तो लुप्त हो गया था 5-10 साल पहले, भगवान ने लीलाएं की इतना समय बीतने पर, लेकिन गोस्वामियों की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से वृद्ध पुनः प्रकट हुआ। तो इन गोस्वामियों की कृपा की याचना करनी चाहिए कि हमें बस भक्ति दें और कुछ नहीं। जब लोकनाथ महाराज का जीवन, हम तो चाहते हैं कि हमारा नाम हो, लोग हमें जाने, खूब प्रतिष्ठा हो हमें हमारी, लेकिन लोकनाथ महाराज कुछ नहीं चाहते थे, शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। ये भी एक महानता है विष्णु। तो अब जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद, उन्होंने ये नहीं, जब हम स्वार्थी बन जाते हैं तो भक्ति नहीं बढ़ती हमारी, जब हम परमार्थी बनते हैं तो भक्ति बढ़ती है। प्रभुपाद भले सारे जीवन वाले बेचारे ग्रंथ लिखते रहे, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, 30 तालों पर जाकर वो जो पर्चे छापते थे भक्ति के बारे में, उनको बांटना, कितनी तपस्या, कितना जीवों का ज्ञान होनी चाहिए। जब मैं भजन करूं वृंदावन में, 70 साल की अवस्था में तो वृंदावन छोड़ता है, वृंदावन छोड़ दिया, ये चिंता नहीं भाई मेरी बाद ही मृत्यु हो सकती है, हो जाए भगवान के काम के लिए, जहां स्वागत है वहां भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, मन अशांत रहता है, जहां परमार्थ है वहां भजन भी होगा और भगवत प्राप्ति भी होगी। प्रभुपाद तो धारण ले लो, नरोत्तम ठाकुर का धारण ले लो, लोकनाथ महाराज का धारण ले लो, जितने महान आचार्य हुए, हमारी ये मूवमेंट जो है, हमारा जो आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन, ये घोषणानंदियों का है, भजनानंदियों का नहीं है। भजनानंदी अपना कल्याण करें जो कई बार होता भी नहीं उनका, बहुत ही कोई भजनीक हो भगवान ईश्वर की कृपा करते, पर क्या हम कलयुग में पति की दाक में भजनीक हो सकते हैं? पर अगर हम परमार्थी बनते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, जैसे प्रभुपाद ने सोचा, उदाहरण है, 70 साल की अवस्था में वृंदावन छोड़ के नर्क में गए, कहां न्यूयॉर्क में, बेकार जगह है, भक्तों के लिए बिल्कुल बेकार है। हां, जो विषयी हैं, जो लोभी हैं, जो कामी हैं, उनके लिए थोड़े समय के लिए अच्छी हो सकती है, बाद में उनको नर्क में जाना है, वहां गए बेचारे बड़ा कष्ट होता है। तो हमें परमार्थी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना, स्वार्थी बनने से कल्याण नहीं होगा। परमार्थी बनने से अंदर ये भावना जागृत करनी है, जैसे यहां पर कुशल्या है, ये कहते मुझे भजन भी करना है, भजन करती है, सेवा छोड़ दी, और क्रोध इसको इतना एकदम क्रोध आ जाता है किसी की बातों पर, बनती है बड़ी महान, सुर्खियां पहुंच गई भगवान के पास, दूसरी जब तारीफ करती है इसकी ऐसा ही होना चाहिए, तो सुर्खियां पहुंच गई। प्रभुपाद कहते थे एक मूर्ख थी, दूसरे मूर्खों ने तारीफ की, वो सोचता मैं बड़ा महान बन गया, जैसे बातों में देखा क्रोध, इसको क्रोध आता है इसको इतना, तो जो भक्त है उसको तो क्रोध आएगा ही नहीं, उसके मन में विषय वासना नहीं रहेंगे, हम भजन करेंगे, घर से मैं भजन करने के लिए आया था, ऐसे नहीं भगवान मिलेंगे। प्रभुपाद ने जैसा किया ऐसा करोगे तो भगवान जरूर मिलेंगे, जाओ पुस्तकों का वितरण करो, प्रचार करो, मन की विषय वासनाएं, मनोस्थिति अच्छी हो जाएगी। आप अभी मन के अधीन हो, अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण मन जो कहता हो करते हो तो नर्क में जाते हो, और क्या है, मन तो बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, जब तक शुद्ध नहीं होगा हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अभी मन अशुद्ध है, अभी किसी को क्या पता कोई कैसा है, ये जो ऐसे तारीफ कर देना, प्रभुपाद ने इसका भी खंडन किया है कि वन फूल इज प्रेज्ड बाय सो मेनी फूल्स डजंट मेक एनी मीनिंग, एक मूर्ख की बहुत सारे मूर्खों ने अगर तारीफ कर दी, जैसे शीला कह देती हाँ ये बहुत महान है कुशल्या, भक्ति और क्या भारती कह देती है, और सोचती कुशल्या में महान हो गए, क्रोध क्यों आता फिर इसमें इतना, क्रोधी क्यों है, महान मोहन को क्रोध नहीं आता, मैं चली जाऊंगी बंदा बन जाऊंगी ये करूंगी वो, एक बार जब से भागे गई बीमार पड़ गई तभी दोबारा आई, यहां पर भगवान ने कृपा की, दंड दिया कि तू गुरु आश्रम में नहीं रह रही, फिर वहां से आई, फिर वहां रख लो। तो ऐसे और भी कई हैं जो मानसिक स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर आना, मन को शुद्ध करना, ये बड़ी दूर की बात है। मन जो कहेगा वो करोगे तो मरोगे, आज जब मन शुद्ध हो जाएगा फिर वो जो कहेगा वो करोगे तो तरोगे, बस उसी से मरना उसी से तरना। जैसे एक बड़ी सुंदर कथा है मन के बारे में, प्रहलाद महाराज ने भी कहा है, मना एवं मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्षयो, मन ही हमारे बंधन का कारण है, मन ही हमारे मोक्ष का कारण है, बंधन का जब जब हमारे बस में नहीं है, मोक्ष का कब जब ये हमारे बस में हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो जो मन जिसका विषय विकारों में लगा हुआ है तो शुद्ध कहां उसका मन, लेकिन फिर भी वो ये सोचता है कि मेरा मन होया जो कहता है वो करता है। इसलिए गुरु क्यों धारण किया जाता है? गुरु आ गया पालन करने के लिए। आंतरिक प्रेरणा से जो हमें गुरु हम धारण करते हैं वो इसलिए ये कि गुरु जो हमें जो कहेंगे वो करना है। समर्पण जैसे नरहरि को बड़े दिनों के बाद अकल आई, पहले भाग गया वृंदावन, अभी कहता नहीं मैं गुरु आगे मैं रहूं, वृंदावन गया वापस आ गया। ऐसे और कई है, वृंदावन जाके अगर अपराध हो जाए तो भद्रलेप हो जाएंगे, कभी उनका मार्जन नहीं होगा। वृंदावन जाने के योग्य हम सेवा और भक्ति और उपचार से बनेंगे। देखो महाप्रभु भी वृंदावन जाना था लेकिन वृंदावन गए ही नहीं, गए वापस आ गए। मां ने बोला पुरी जाओ, पुरी में भी नहीं बैठे भगवान, यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को भक्ति में भगवान उदाहरण दे रहे हैं। कौन? स्वयं कृष्ण, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और कृष्ण क्या कह रहे हैं ये भी बताए आपको मैंने। भगवान कहते हैं जो प्रचारक है मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। प्रचारक मतलब स्वार्थ कुछ नहीं है उसमें। या इदम परमम गुणम मद भक्तेश विदाश्यति भक्ति मई पराम तत्वा माम वेश्यति संशया। जो प्रचार करता है दूसरों को भक्ति का नाम देता है, दूसरों को भक्ति में लगाता है, भक्तों में जो प्रचार करता है, भगवान कहते निश्चित रूप से उसको मेरी भक्ति मिलेगी और अंत में मेरे पास आएगा और उससे प्रिय ना कोई हुआ ना होगा। स्वार्थी बहुत बड़े हुए हैं ब्रज में जब कर रहे हैं, क्या उनका कल्याण हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। पर अगर परमार्थी बनेंगे तो बड़ा आसानी से ऐसे संतों की कृपा से महाप्रभु की कृपा मिल जाएगी, परंपरा की कृपा मिलेगी और हमारा कल्याण हो सकता है, नहीं तो कल्याण नहीं। करते रहो बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेमा धन। ऐसे थोड़ा कहा कोई बहुत जन्मों तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे, पर अगर अपने आप को अपराधों से नहीं वो बचा सकता उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, अपराध है। तीसरा नाम अपराध गुरु अवज्ञा, गुरु के आगे नहीं पालन करना। जब गुरु धारण किए अभी चलो नर हरि के ध्यान में आ गया गुरु, वहां महिमा सुनी ना गुरु की, गुरु वहां पर गुरु वहां जब पालन करनी चाहिए तो ठीक है। हाँ भाई गुरु की आगे सुननी चाहिए, इसलिए अब गुरु आश्रम में रह गए। तो देर आए दुरुस्त आए, पर जो भटक रहे हैं उनको समझना चाहिए जब गुरु हमने बना लिया तो गुरु आज्ञा पालन करे। और जिसे कोई गुरु आज्ञा पालन नहीं करने पर दंड मिलता है, हम समझते उस पर भगवान की कृपा है। जैसे कुशल्या यहां से चली गई तो दंड मिला उसको, बीमार हो गई, फिर खुद ही आई यहां पर, कहते मुझे रख लो वहां पर। अभी मान इसका बस में नहीं है कहते हुए कि जाऊंगी, क्यों अगर कोई समझाता है तो सुनते नहीं। ऐसे कई हैं मनमर्जी करने वाले। तो जब भगवान दंड देते हैं तो समझो भगवान की कृपा है, सुधार कर रहे हैं। जैसे कुंती माता जब कोई आ गया पानी नहीं करती तो दंड मिलता है भगवान का। मैं कहता तेरे पर तो कृपा, भगवान की कृपा है, भगवान सुधार कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं गुरु आज्ञा में नहीं रहते लेकिन दंड नहीं मिलता, भगवान की कृपा नहीं है। अच्युत अभी तो रात को कथा भी नहीं सुनता तो क्या बात तुमको, फिर भी तो सुनता ही यहां पर ऐसा जंगली या तू आगे पालन नहीं करता। तो कई यहां जो आगे पालन करते दंड भी नहीं मिलता, भगवान की कृपा नहीं है। अभी देखो ऐसी हम देखते हैं गुरु महाराज की इतनी कृपा है, कभी हमसे कोई गलती हुई एकदम भगवान सुधार करते हैं और हमें गुरु कृपा से पता लग जाता भी यहां गलती ये हुई। कोई मान लो मन में कैसे, मैं आपको उदाहरण देता हूं, अपना उदाहरण दे रहा हूं, संकल्प आ गया कि नहीं भाई भजन करना है, रात को उठ के करना है, मैं आ गया ना मैं करूंगा, मैं कहां कर सकता हूं भजन, जब तक संतों की कृपा ना हो भगवान ना खिलवाए तो होता ही नहीं, तो रात को होते उठे नहीं पाते, संकल्प गलत संकल्प विकल्प हो रहा है ना मन में, वो मानसिक स्तर की बात है, कोई ऐसे मन में आता है ना ये करूंगा तो होता ही, वो भगवान एकदम सुधार कर देते हैं, एकदम कृपा करते हैं, तो उनकी कृपा बनी रहे, वो हमारा सुधार करते रहे। तो प्रभुपाद कृपा से मैं यही कहता हूं, हे कृष्ण हे प्रभुपाद बस सुधार करता रहना, ताकि जीवन के अंदर तक हम सुधर जाएंगे, ताकि हर ओर से मन हट करके आपके श्री चरण में लग जाए अंत में। वो बड़ा कठिन है, शमशान वगैरह के तो हो जाता है थोड़ी देर के लिए, जैसे भक्तों की मृत्यु हो गई, एक को शमशान वगैरह हो गया थोड़ी देर के लिए, ये नहीं है कि इसकी ड्यूटी किसने लगाई है, क्या कर रहा है, किसको तो शमशान वैराग्य से लाभ नहीं, हर समय मन में वैराग रहना चाहिए। फल्गु वैराग्य क्या होता है, नदी ऊपर से सूखी है रेत अंदर से पानी निकलता है, ऊपर से वैराग हो गया अंदर इच्छाएं बनी हुई है, तो बड़ी बातें समझने की है। जब अपनी बातें से गुरु धारण किया है, ये प्रण करो कि गुरु आगे में रहना है, जैसे प्रभुपाद ने गुरु बनाए थे अपनी इच्छा से, गुरु ने कहा था विदेश में प्रचार करना, बेचारे 70 साल उम्र हो गई विदेश में जाने के लिए, इतनी भावना से गुरु आज्ञा पालन कर रहे हैं, वृंदावन छोड़ दिए, सोच उन्होंने ये नहीं सोचा भाई अभी मेरी तो मृत्यु हो सकती है क्या करूंगा अमेरिका छोड़ू, नहीं, ये तो भगवान ने गौलोक धाम उनको दिया, ये है संतों का चरित्र। वहां बीमार हो गए बेचारे, भारत आए इलाज करने के फिर चले, एक लेक्चर में सुन रहा था उसमें कहते हैं लॉस एंजलिस से जा रहे हैं प्रभुपाद भारत, कहते बस मैं लिए जा रहा हूं अभी, स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, पता नहीं मैं वापस नहीं आऊं, सदा मृत्यु का चिंतन हम सबको भी करना चाहिए। तो संत क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि नृसिंह भगवान तुम सबकी रक्षा करें, तुम्हारी भक्ति की रक्षा करें, ये इनका आशीर्वाद से जो है हम थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत कठिन। एक मेरे से भी पता नहीं वो गुरु अवज्ञा हुई, वृंदावन में जब प्रभुपाद थे मुझे सेवक बनाया उन्होंने, तो वृंदावन का मैनेजमेंट आज तक ठीक नहीं हुआ, कई प्रेसिडेंट बदले, तो एक बार घटना घटी के मैं उनका सेवक था, उनकी सेवा में बड़ा आनंद ये क्योंकि एक संत का संग जो है अति दुर्लभ है, बहुत अच्छा लगता था, डांट भी पड़ती थी तो बहुत अच्छा लगता था, तो ऐसा उनको पता लगा कि जो भगवान का जो रसोई घर है जहां भगवान के लिए भोग बनता है वहां 3 किलो देसी घी रोसा लगता है, 3 किलो बहुत होता है, तो पर कहते क्या करते हैं 3 किलो घी को, चोरी चारी होती होगी, क्या होता होगा क्या करते है? और भी कई बातें, तो देखो प्रभुपाद कहते थे रात को 2 बजे प्रभुपाद जब उठे हैं अनुवाद करने के लिए तो वो अपना ऊपर थे, ऊपर के कमरे में मैं कमरे के आगे सोया हुआ हूं, तो आवाज लगा रहे हैं चौकीदार चौकीदार चौकीदार। जैसे रात को मैं 1:30 बजे आया तो किशनदार चौकीदार जो है वो टांगे फैला के बैठा हुआ था, आए तो उठ के बैठ गया, मैं सोया नहीं, सोया था उस समय। आराम थोड़ा करना, तो चक्कर लगाना होता है, तो देखना होता है। तो चौकीदार तो मेरी नींद बड़ी पतली, मैं भी उठ के आ गया, मेरे प्रभुपाद तू चाहिए आपको, कहते कोई चौकीदार कहा। मैं नीचे गया तो चौकीदार के हम छुप के सो रहे हैं, तनख्वाह लेते हैं, तो खिलाड़ी थोड़े करते हैं पूरी। और वृंदावन में जहां भगवान कृष्ण थे वहां कंस भी था, चोर बड़े वृंदावन में, चोरी बड़ी। तो मैं गया नीचे ढूंढा चौकीदार, कहीं नहीं मिला, कहीं सो रहा है जाकर। चौकीदार में कब आते हैं जब भक्त लोग जाने लगते हैं 3-3:30 बजे। मैंने कहा प्रभुपाद को कहीं नहीं मिला, तो अनुवाद करने बैठ गए वो। तो चौकीदार पता नहीं 4 बजे आया या 3:30 आया, तो मैं देख रहा था जब आया, जब वो आया तो मैंने पूछा कहां था तू, उसने क्या कहा, ड्यूटी पर, मैं ड्यूटी पर तू था ही, मैं सब देखा तेरे को। मैंने उसको डांट लगाई, जब मैं चौकीदार को डांट लगा रहा हूं कहूंगा प्रभुपाद ढूंढ रहे थे चौकीदार को, तो पीछे से प्रभुपाद खड़े खड़े सब सुन रहे थे। संत तो वह सब जानते हैं, तो सुन रहे थे चौकीदार को, मैंने डांट लगाई। तो दूसरे दिन मेरे को कहते हैं प्रभुपाद, उस समय भगत जी एक थे वो भी बैठे हुए हैं, प्रभुपाद कहते हैं नव युगंदर के जी देखो वृंदावन का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इतना घी खर्चा होता है। और आपको उन्होंने नोट किया भाई जो मेरी चिंता थी, इसने भी चिंता की चौकीदार के लिए, उसको डांटा, कहते तू वृंदावन का प्रेसिडेंट बन गया। मेरे मन में आया प्रभुपाद मेरी इच्छा है आपके साथ रहने की, मैंने ये कहा। कहते हैं अभी मैं वृंदावन छोड़ के कहां जाऊंगा, ये 1975 की बात है, मैं यही रहूंगा वृंदावन में। तो उधर भगत जी कहने लगे प्रभुपाद ये ठीक है, ये इंडियन है, भारतीय है, तो ये अच्छा रहेगा, इसको बना दो। ये मुझे लगता है मुझे गुरु आज्ञा पालन की होती। फिर प्रभुपाद भी चुप रहे, अगर वृंदावन रहते तो फिर ये उदयपुर में नहीं प्रचार होता है, मंदिर नहीं बनता। यहां प्रभुपाद ने हमें निमित्त बनाना था, जम्मू कश्मीर में प्रचार की बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि दादा गुरु की इच्छा थी। जब 115 साल पहले भक्तिसिद्धांत महाराज यहां आए थे, हमारे गुरुदेव थे, गुरुदेव बोला भाई जम्मू कश्मीर सुंदर तो बड़ा है लेकिन यहां कोई गौर राधा कृष्ण का मंदिर नहीं, अच्छा भविष्य में एक मंदिर बनेगा। 115 साल पहले थे, कह गए थे तो प्रभुपाद ने ये मंदिर अभी बना दिया उनके लिए, अपने गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए। तो फिर अगर उनके ध्यान में ये बातें आएगा आ गई होंगे, बड़ा जोर नहीं लगाया, तो फिर मैं उनके साथ ही रहा। फिर हम जब बम्बई पहुंचे घूमते घूमते, तो वहां फिर अफ्रीका का आ गया पत्र आ गया कि भाई इसको भेजो, यहां बड़ी चोरी हो रही है, ये है वो है। फिर हमारे गुरु भाई भी नहीं चाहते थे कि हम रहे प्रभुपाद के साथ, प्रभुपाद के साथ रहने में बड़ी बात थी। और गुरु भाई भी जो है कहले हां इसको भेजो, प्रभुपाद की इच्छा थी हम साथ में रहे, लेकिन गुरु भाई ने देखा भाई ये मेरी चाह रहे। मैंने कहा प्रभुपाल मेरी इच्छा आपके साथ रहने की है। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आवश्यक है तो मैं तुम्हें आज्ञा कर सकता हूं। आई कैन ऑर्डर यू, मेरा ऑर्डर है वृंदावन जाओ, वृंदावन में उपदेश जाओ। तो उनकी कृपा से मैंने कहा अगर आपका ये आदेश है तो मैं जाता हूं। फिर बड़े खुश हुए, फिर वो गीता का 18वां अध्याय निकलवाया, ये श्लोक पढ़वाए दोनों जो मैंने आपको सुनाए। अभी भक्त जो है प्रचारक बड़ा प्रिय, उनकी कृपा से गए, वहां भी मंदिर बन गया। तो आत्मा कहती है नहीं भाई, अगर हम उनके वृंदावन में प्रेसिडेंट बन जाते तो फिर वो कहीं नहीं जा पाते, वृंदावन में रहना था हमने हमेशा के लिए। लेकिन देखो प्रभुपाद ने वृंदावन छोड़ा, फिर उन्होंने वृंदावन श्री कह रहा हमको नहीं कहा। तो ये मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने अगर प्रभुपाद के आगे पालन की होती आज तक वृंदावन नहीं रहता। लेकिन नहीं, तो प्रभुपाद ने मुझे आज्ञा दे करके विदेश भेजा था, मेरा आदेश है तुम जाओ। तो आप लोगों को क्या लगता है, मैंने अवज्ञा की गुरु जी की? नरहरि सुनाई दे रहा कुछ नहीं है? तो स्पीकर के पास बैठा करो ना, फिर उधर बैठा करो स्पीकर। तो क्या क्या मैंने अवज्ञा की भाई? नहीं, कैसे की? उन्होंने कहा वृंदावन की सेवा करो। नहीं कैसे? मुझे जाने के बाद में नहीं ना, पहले तो कहा था वृंदावन की सेवा करो है? तो भाई क्या नाम दे रहा, इसको पूछ। नीरज क्या है? नहीं सुनाई दे रहा स्पीकर के पास बैठा करो, क्या फायदा? मैं चिल्लाता रहूं तुम लोगों को सुनाई तुझे। बोलो शिला लोकनाथ गोस्वामी महाराज की, बोलो शिला जगन्नाथ गोस्वामी महाराज की, बोलो शिला प्रभुपाद की, बोलो शिला नरोत्तम ठाकुर की। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है, प्रशंसा तो नहीं है किसी को, तेरी बात तेरे को है, है? क्या हमने थोड़े की, उन्होंने की महामंत्र का ध्यान किया करो। बहुत कंफ्यूज हो बेचारा, कंफ्यूजन निकाल अपना सारा।